رکوع نمبر 14 کو دیکھتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جا رہے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں راہرو مسافروں کے لیے. فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے. ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کان کے کچے ہیں, یعنی پہلے خدا کے جھوٹی سچی باتیں کرتے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے تو بعد میں جا کے ہنستے کہتے ہیں دیکھو کتنے کانوں کے کچے, ہر ایک کی بات کا یقین کر لیتے ہیں. ان کو پٹانا کیا آسان ہے, جو بھی کہہ دیں گے انہوں نے ہنستے نہیں, انہوں نے بات کر دینی ہے, بعد میں آ کے ان کی ان باتوں کا مذاق اڑاتے. آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان کے کچے تمہارے حق میں بھلے ہیں, یعنی شکر کرو کہ تمہاری بات مان لیتے, تمہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے نا. وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے, اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے. محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں, حالانکہ اگر یہ ایمان والے ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضا مند کرنے کے زیادہ مستحق تھے. کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ زبردست رسوائی ہے. منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلائے. کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے ہو, اللہ یقیناً اسے ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپا رہے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے, یعنی دین کو ہنسی بناتے ہیں نبی کے مذاق کو. کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم بہانے نہ بناؤ, یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے. اور اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگوں کو تو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے. رکوع نمبر 14 تھا. اس کا عنوان کیا ہے, زکوٰۃ کس کو دیں. اس میں آیت نمبر 60 جو ہے یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے. 8 مختلف جگہیں ہیں جہاں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کون سی؟ فقیروں کو, مساکین کو, وہ لوگ جو صدقے کے کام پر مامور ہوں, یعنی صدقہ زکوٰۃ کی رقم کلیکٹ کرنا, اس کا حساب لینا, تو اگر ان کی جاب ہے وہ تو ان کی پے اس میں سے دی جا سکتی ہے. پھر جن کی تالیف قلب مطلوب ہو, یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو دین میں نئے نئے آتے ہیں, ابھی اسلام پوری طرح دل میں نہیں راسخ ہوا, رغبت دلانے کے لیے اگر ان کو کچھ دینا پڑے تو دے سکتے ہیں. پھر گردنوں کے چھڑانے میں, یعنی قیدیوں کو آزاد کرنا, قرض داروں کی قرض ادا کرنے میں, اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ, اور مسافر نوازی کے لیے, یعنی مسافروں پہ بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں ہمیشہ ہی بہت کچھ سننے کے لیے لوگ منتظر ہوتے ہیں, لیکن اصل میں اس کی فقہی باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ کم از کم آپ کو ان آیتوں کے پڑھنے سے فائدہ ہو. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ مال کو بڑھانے کے لیے اور مال کو پاک کرنے کے لیے. یہ دو لفظ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ کبھی زکوٰۃ دینے سے دل میلا نہیں کریں گے. مال بڑھتا ہے کیونکہ زکوٰۃ کا لفظی معنی بڑھنا بھی ہوتا ہے, اور باقی مال پاک بھی ہو جاتا ہے. شریعت میں کس پر فرض ہے؟ جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب شخص کی کیا حق شرط ہے, کتنا ہے؟ کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی, اور اگر سونا چاندی نہیں تو باقی چیزوں کو بھی اسی قیمت میں, یعنی جتنے میں یہ چیز آتی ہے اتنی قیمت ایک سال تک اگر کسی انسان کے پاس رہتی ہے تو پھر وہ رقم زکوٰۃ کے قابل ہوتی ہے. 2.5%, یعنی 40واں حصہ دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا اکثر جو ذکر آتا ہے وہ نماز کے ساتھ آتا ہے. حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ہے توحید کی دعوت کے بعد, اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے. और ज़कात जिस माशरे में आम हो जाती है, फिर वहां पे कभी भी लोग गरीब नहीं रह सकते। आपको याद हो, कहीं आपने कहीं पढ़ा हो कि हजरत उमर फारूक का दौर वो था कि लोग माल ले लेके फिरते थे कि लोगों हमारा माल ले लो, और कोई लेने वाला नहीं होता था। क्या वजह थी? क्या मिरेकल था? नहीं, एक निज़ाम ऐसा चलता था अमीरों से लेके गरीबों को दे दें। आज भी अगर हमारे मुल्कों में अमीर लोग अपनी पूरी ज़कात देने लग जाएं तो कोई गरीब ना बचे, यकीन करें। और अगर हम टैक्स सही देने लग जाएं तो हमारे मुल्कों के ऊपर कभी भी कोई किसी गैर मुल्की कौम का कर्जा न रहे। बहरहाल ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है। 82 मरतबा कुरान पाक में इसका जिक्र आता है। और अमूमन क्या आता है? आतुस ज़का। अब जरा सोचिए, जो लोग ज़कात नहीं देते वो अल्लाह के 82 टाइम्स दिए हुए हुक्म का इनकार करते हैं। सही बुखारी में, सिर्फ सही बुखारी का बता रही हूँ, पूरी हदीस की बातें नहीं है, 100 हदीस, यानी 100 हदीसें हैं ज़कात देने के बारे में, 100 हदीसें। और ज़कात ना देने की सूरत में दर्दनाक अज़ाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो माल जिस पे ज़कात नहीं दी जाती, क़यामत के दिन यानी उस शख्स के सामने उसकी कब्र में एक सांप बन के आएगा और उसके जबड़े को खोलेगा, चीरेगा और उसको डंक मारेगा और कहेगा, अना कंजुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ। पूछा, कंज क्या है? फरमाया, जिस माल पे ज़कात नहीं दी जाती। ज़कात किस किस को दी जाए ये तो हमने अभी देख लिया। इसके बारे में कुछ मजीद बातें जहन में रखते हैं, और वो क्या है कि वो लोग जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती, उसमें अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दी जा सकती, इसी तरह औलाद को ज़कात नहीं दी जा सकती, गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती, बनू हाशिम जिनको आज के दौर में हम लोग सैयद कहते हैं उनके ऊपर ज़कात जायज़ नहीं, और साहिब निसाब को ज़कात नहीं दी जा सकती, लेकिन रिश्तेदारों को देने का दोहरा अजर है। इसी तरह बीवी अपने ज़ाती माल में से शोहर को ज़कात दे सकती है अगर वो मुस्तहिक हो। फिर इसी तरह आप देखिए कि ज़कात जल्द से जल्द देनी चाहिए, पेशगी भी दे सकते हैं साल पूरा होने से पहले भी, फिर अगर चाहें तो सारा साल देते रहें और एंड पे उसका हिसाब कर लें। और बेहतर पसंदीदा बात क्या है कि जिस जगह ज़कात का माल हो उसी जगह खर्च हो, लेकिन अगर वहाँ ज़रूरत ना हो तो फिर दूसरी जगह भी दिया जा सकता है। और इसके अंदर फिर यही बात है कि जो कोई ज़कात वसूल करता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक दुआ दिया करते थे, जिस आपने अब्दुल्ला बिन अबी औफा से एक रिवायत आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब भी कोई सदका लेके आता फ़र्ज या नफिल तो आप एक दुआ मांगते थे, क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला आली फ़लानिन, यानी जो घर वाला आपकी तरफ ला रहा है, मिसाल है किसी का सर नेम अगर मोहम्मद है तो आप कह सकते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला आली मोहम्मदिन, ये वाले मोहम्मद या जो भी उनका नाम है, तो उनके लिए ये दुआ करना भी मसनून है। इसमें कोई यानी कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके बाद यह है कि चाहें तो सारी जगह पे दे दें, 8 मद हैं इधर इनमें से, और चाहें तो किसी एक में भी इकट्ठा दे सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सब में दे के किसी एक को भी दे दें। इस पर अगर कोई मजीद करना चाहे तो रिसर्च, तो इकबाल केलानी की जो किताब है ज़कात के मसाइल, उसका मुताला आप कर सकते हैं। उसमें से आपको इंशाल्लाह बहुत सारी फिकही नौयत की बातें भी मालूम हो सकती हैं। और दुआ यही करनी है अपने अमल के लिए कि हमें ज़कात देने की अल्लाह तौफीक दे। अगर आज तक नहीं दी तो देनी पड़ेगी। एक औरत थी नबी सल्लम के पास आई, उसकी बेटी साथ थी, उसने मोटे कंगन पहने हुए थे। आपने फरमाया कि क्या जब से ये बने हैं तुमने इसकी ज़कात दी है? कहने लगी नहीं। तो आपने फरमाया कि इसकी ज़कात दो, वरना क्या तुम पसंद करती हो कि तुम्हारे लिए आग के कंगन हो? तो उसने कहा नहीं। तो फिर उसने अपने वो कंगन उतारे और कहा मैं इसको अल्लाह के नाम पे सदका करती हूँ, कि पता नहीं अब कितनी ज़कात है और क्या है। फिर यहाँ एक और बात जो हमारे अमल से मुतल्लिक है वो याद रखिए कि औरत अपने जेवरात या अपने माल या अपनी मलकियत की चीज़ों की खुद जिम्मेदार है। अगर उसका शौहर अदा कर देता है तो अच्छी बात है, उसकी तरफ से एक एहसान होगा, लेकिन अगर शौहर नहीं देता तो उसका जवाब गुना शौहर को नहीं बीवी को होगा। आपके जहन में सवाल होगा औरत के पास पैसे नहीं, कमाती नहीं, तो उसका आसान तरीका यह है कि उसी में से कोई एक छोटी सी चीज़ बेच के उसी के पैसों से उसको अदा करेगी। चलिए रुकू नंबर 15, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बादुहुम मिन बाद। तमाम मुनाफिक मर्द और औरत आपस में एक ही हैं। क्या है इनके अंदर एक, क्या सिमिलैरिटीज हैं? ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भली बातों से रोकते हैं, अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने इन्हें भुला दिया। बेशक मुनाफिक ही फासिक और बदकिरदार हैं। अल्लाह ताला इन मुनाफिक मर्दों, औरतों اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کاللذین من قبلکم، مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ بہت زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، یعنی گزار لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے، تم نے بھی ان سے اسی طرح مذاق اور بحث کی جیسے انہوں نے کی تھی، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین کی اور ان بستیوں کی جو الٹی گئی تھیں، یعنی قوم لوط، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے، اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب منافق عورتوں اور مردوں کی باتیں بتانے کے بعد اب مومنوں کا ذکر ہے، دیکھیے گا، تقابل کریں ساتھ ساتھ۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا، اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 15، اس کا عنوان کیا ہے؟ دو طرح کے لوگ اور دو طرح کے انجام۔ ابتدائی رکوع میں منافقین کی خصوصیات پتہ چلی، چار خصوصیات تھیں۔ نمبر 1، اور آپ نے سننا ہے ساتھ ہی ساتھ جائزہ لیتے ہوئے اپنا بھی، کہ کیا میرے اندر یہ خصوصیات تو نہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، کہاں ممبر پہ جا کے کہتے ہیں برائی کرو، نہیں، رغبت دلاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں برائی کے اشتہار بن کے پھرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، کیسے؟ اس کو حقیر قرار دے کے، ان کی اہمیت کو کم کر کے، اپنے ہاتھوں کو خیر سے روکتے ہیں اور اللہ کو بھول گئے۔ ان کے لیے اللہ نے انجام کیا بتایا، چار ہی انجام ہے، چار ان کے کام تھے، چار ان کے انجام ہے، کیا؟ دوزخ کی آگ، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اللہ کی لعنت، اور قائم رہنے والا عذاب۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ان چار میں سے کوئی ایک خصوصیت میرے اندر تو نہیں؟ کیا میں لوگوں کو برائیوں کی دعوت تو نہیں دیتی؟ اللہ کو کیسے بھولتے ہیں؟ اپنے عمل سے بتاتے ہیں، نمازوں کو بھول کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر اس میں کوئی ایک صفت ہے تو اس کو نکال دے، اور اللہ نے اگر ان چار عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب ہمارے حق میں لکھا ہے تو اس کو ہم سے دور کر دے۔ اور مومنوں کی چار خوبیاں، بلکہ 6 خوبیاں ہیں مومنوں کی، لکھ لیجئے آیت نمبر 71 کے حوالے سے۔ ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 5 چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 1، رحمت اترے گی، ایسے باغات جس میں نہریں بہتی ہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ قیام گاہیں ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا کہنا ہے؟ کہ اپنے اعمال کی قدر کروانی ہے، منافقت والے کاموں سے رکنا ہے، اور ایمان والوں کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے۔ کیا خیال ہے ان 6 باتوں پہ عمل نہ کریں؟ اپنے لیے کام لکھیں، اس پہ ایک ایکٹیویٹی چھوٹی سی، یہ جو 6 خصوصیات ہیں مومنوں والی، اس پہ عمل کرنا ہے۔ کیا कैसे, इसको आप खुद अपने लिए तलाश करें और फिर देखें कि आपने इसमें किस पे अमल किया और किस पे अमल नहीं किया। रुकू नंबर 16, या अय्युहन नबीश जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, ए नबी काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद जारी रखो, इन पर सख्त हो जाओ, इनकी असली जगह दोज़ख़ है जो नहायत बदतरीन जगह है। ये अल्लाह की कस्में खाकर कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, हालांकि कुफर का कलमा यकीनन इनकी जुबान से निकल चुका है और ये अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए हैं और उन्होंने इस काम का कसद भी किया जो पूरा न कर सके। ये सिर्फ इसी बात का इंतकाम ले रहे हैं कि इन्हें अल्लाह ने अपने फजल से और इसके रसूल ने दौलतमंद कर दिया। अगर अब ये तौबा कर लें तो ये इनके हक में बेहतर है, अगर मुंह मोड़ेंगे तो अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब देगा और जमीन भर में इनका कोई हिमायती और मददगार न होगा। इनमें से वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमें अपने फजल से माल देगा तो हम जरूर सदका खैरात करेंगे और अच्छी तरह से नेकोकारों में शामिल हो जाएंगे, लेकिन फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बखिलू बिह वतवल्लौ वहुम मुरीदून, लेकिन जब लोग अल्लाह ने अपने फजल से इनको दिया तो ये इसमें बखीली करने लगे और टाल मटोल करके मुंह मोड़ लिया, बस इसकी सजा में अल्लाह ने इनके दिलों में निफाक डाल दिया अल्लाह से मिलने के दिनों तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे का खिलाफ किया और झूठ बोलते रहे। अलम यालमू अन अल्लाह यालमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन अल्लाह अल्लामुल गुयूब, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह को इनके दिल का भेद और इनकी सरगोशी सब मालूम है। अल्लाह तआला गैब की तमाम बातों से खबरदार है। अल्लज़ीन यलमिज़ून अल-मुत्तवईन मिनल मुमिनीन, जो लोग इन मुसलमानों पर ताना जनी करते हैं, जो दिल खोल कर खर्च करते हैं और इन लोगों पर जिन्हें सिवाय अपनी मेहनत और मजदूरी के कुछ मुयस्सर ही नहीं, बस ये लोग मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह इनसे तमस्खुर करता है, इन्हीं के लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, इनके लिए तो इस्तग़फार कर या ना कर, अगर तू 70 मर्तबा भी इनके लिए इस्तग़फार करेगा तो भी अल्लाह हरगिज़ इनको ना बख्शेगा। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफर किया और ऐसे फासिक लोगों को रब्बे करीम हिदायत नहीं देता। ये है रुकू, इसका नाम क्या है? निफाक पर मौत। पूरे रुकू में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तदा में हुक्म दिया क्या कि आप काफिरों और मुनाफिकों पर सख्ती कीजिए और इनसे जिहाद कीजिए। यहां देखिए कि मुनाफिकों को कुफार के साथ मिलाया गया, इस चीज की अहमियत बताने के लिए कि बाज दफा का निफाक जो है वो इंसान को कुफर की तरफ ले जाता है। दूसरी चीज, इस रुकू में अल्लाह ताला ने फिर मुनाफिकों के कुछ रवैये कि वो कस्में खाते हैं आके, कुछ बातें अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की भाग दौड़ बताई है। कौन सी? नंबर एक, इस बात पे कसम खाते हैं कि हमने कुफर की बात नहीं की। फिर इस बात पे उनको गुस्सा आता है कि अल्लाह और उसका रसूल इनको अपने फजल से जो गनी करता है तो दूसरों को ज्यादा क्यों मिलता है। बस ये अहद करते हैं कि अगर अल्लाह हमें माल देगा तो हम उसमें सदका करेंगे, लेकिन जब माल मिल जाता है तो फिर बुखल पे आते हैं, अपने अहद से फिर जाते हैं, अहले ईमान की माली कुर्बानियों पर बातें बनाते हैं, अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं। इसमें एक वाक्या भी आता है कि जब जिहाद की बात हुई तो कुछ लोग जो थे वो भड़बड़ के लेके आए ज्यादा से ज्यादा सामान, तो इसके देख के मुनाफिकों ने बातें की, देखो शो मार रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, अपने नंबर बना रहे हैं, बहुत बड़ा ला रहे हैं। और कुछ लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, एक सहाबी थे तो उनके पास कुछ ज्यादा माल नहीं था। जब अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि अपने पास जो भी चीज़ है उसको लेके आओ, क्योंकि तबूक का मौका ऐसा था कि इसके लिए फंड्स भी जमा किए गए और लोग, ये वो मौका है कि जिस मौके पे हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरे घर का सामान ले आए, हजरत उमर आधे घर का लाए, हजरत उस्मान ने बहुत सारे घोड़े दिए और इसी तरह से बातें हुई। तो एक सहाबी थे, उनके दिल में ख्याल आया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? बैठ जाते खामोशी से, बैठे नहीं। एक यहूदी के कुएं पे गए, सारा दिन उनका कुआं से पानी निकालते रहे और रात को एक मुट्ठी भर खजूरें उनको मिली मजदूरी में और वो लेके आए और नबी सल्लम को शर्माते हुए दी कि अल्लाह के नबी, आज तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस बात को देख के मुनाफिकों ने उनका मजाक उड़ाया कि देखो मुट्ठी भर खजूरों से रूम को फतह करने जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके इस अमल की कितनी बड़ी कदरदानी की कि आयत नाजिल कर दी कि इनमें से कुछ लोग हैं कि जो कुछ नहीं पाते मगर अपनी मेहनत का। अमल की बात क्या है कि अगर अल्लाह के दीन के लिए करने के लिए या देने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं भी है तो जितना है उसी को दे दो। आपने नबी सल्लम ने वो खजूरें ली और उसको पूरे उस ढेर के ऊपर फैला दी और फरमाया कि आज मुट्ठी भर खजूरें जो हैं वो सारे ढेर पे गालिब आ गई। अल्लाह ताला इंसान की नीयत देखता है, उसकी कोशिश देखता है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखता है। किस दर्जे का नेकी करके आए हो, क्या काम करके आए हो। मुनाफिकों की आदत ही मजाक करने की, जो नहीं थोड़ा लाए तो उनका मजाक किया कि ये तो क्या दे रहे हैं और जो बहुत लाए तो कहा ये तो दिखाने को दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि इन लोगों को छोड़ दो। फिर इसमें एक और हमारे अमल की बात बड़ी अहम है और वो क्या कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हमें माल मिलेगा तो हम बहुत खर्च करेंगे, लेकिन जब मिल जाता है तो बुखल करते हैं। हमें अपना जायजा लेना है कि हमारे अंदर ये आदत तो नहीं। माल के साथ कुछ और भी हो सकता है। हम कहते हैं नेकी का कोई मौका आए हम बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेंगे, फिर मौका आ जाता है तो फिर हम कहते हैं नहीं अब हम मसरूफ हो गए, अब आप कुछ और कर लें, हम अब इंटरेस्टेड नहीं रहे। ये एक मजाक होता है दीन के नाम के साथ। कुछ लोग ऐसा मजाक करते हैं, ऐसे लोग सिर्फ अपने ही मुजरिम नहीं होते, उस दीन के उस कॉज के अंदर भी एक उनका हिस्सा जो है वो बुरे रंग में डलता है। और आखिर में आयत में एक बात हुई मुनाफिकों के नाते से, थोड़ा सा बताना चाहूंगी मुनाफिकत की बात, क्योंकि इस पूरे रकू सूरत में खास तौर पे कल इब्तदाई हिसाब पढ़ेंगे जब आके इंशाल्लाह ताला, तो मुनाफिकों के बहुत सारे पोल खोलेंगे। और गज़वा तबूक ही वो गज़वा था कि जब नबी सल्लम को मुनाफिकों के नाम भी बता दिए गए थे, लेकिन यहां जो बात हुई वो क्या थी, अब्दुल्ला बिन उबई की। नबी सल्लम जब मदीना में आए तो उससे पहले अब्दुल्ला बिन उबई को सरदार बनाया जा रहा था, उसकी रस्म ताजपोशी थी। लेकिन जब नबी सल्लम आ गए तो लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हो गई। सूरत बकरा में मैं आपको ये चीज बता चुकी हूँ, पहले पारे पे याद होना चाहिए आपको। तो बहरहाल पूरा वक्त अब्दुल्ला बिन उबई मुसलमानों के साथ रहा, लेकिन दिल में निफाक था, खोट था। तो जब उसकी मौत का वक्त आया तो उस वक्त फिर अल्लाह के नबी सल्लम के पास उनका बेटा आया, अब्दुल्ला ही नाम था, सही नेक सहाबी थे। तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लम, मैं जानता हूं कि मेरा बाप गुनाहगार था लेकिन इस्लाम का कलमा तो पढ़ता ही था, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। नबी सल्लम का दिल चूंकि नरम था और आप कभी अपने दिल में कोई बुराई नहीं लेते थे, आप वो सारी बातें भूल के जो अब्दुल्ला बिन उबई ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमतें लगाई और आपके ऊपर बातें की, आप उसकी नमाज जमाजा के लिए तैयार हो गए। बल्कि बाज रिवायतों में आता है कि अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह के नबी आप अपनी कमीज दे दें, मैं चाहता हूं कि मेरे बाप को आपके कुर्ते में कफन दिया जाए, शायद अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दे। और आप देखिए कि औलाद की हमेशा ख्वाहिश होती है कि माँ बाप जैसे भी हैं अल्लाह ताला उनको ढांप ले। नबी सल्लम ने जरा भी देर नहीं की, अपना कुर्ता उतार के दे दिया। और आप में से शायद कुछ लोगों को पहले से मालूम हो कि अब्दुल्ला बिन उबई नबी सल्लम के कुर्ते में कफनाया गया, इसके बावजूद ये सारी कोशिश। और आपने ये क्यों किया, अब्दुल्ला बिन उबई का एक एहसान था। ग़ज़वे बदर में जब जंगी कैदी आए उनमें नबी सल्लम के चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, ऊंचे लंबे थे चौड़े थे, किसी को उनकी कपड़ा पूरा नहीं आया तो अब्दुल्ला बिन उबई का कुर्ता उस वक्त पूरा आया था तो उसने वो नबी सल्लम को दिया था। आपने अपना कुर्ता दे के उनका वो भी एहसान उतार दिया। बाज़ रिवायतों में आता है कि आपने अपना लुआबे दहन तक उसकी कब्र में डाला, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं आप एक नहीं 70 बार उसकी दुआएं मग़फ़रत करें हम नहीं बख्शेंगे। आज लोग खाना काबा में जाते हैं और जमजम से कफन को धुला के आ जाते हैं तो फिर नतीजा क्या निकलता है, कहते हैं बख्शे के। बहुत सारे लोगों में एक गलत फहमी है जो दूर करना चाहूंगी कि जमजम के धुले हुए कफन को पहनाने से मुर्दा बख्शा जाएगा। बाद लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की चादरों के ऊपर दफनाते हैं, असल बात क्या है कि दिल में अगर ईमान नहीं तो ऊपर की सारी चीजें बेकार है। आप कब्रों के ऊपर जितने मर्जी फूल लाद दीजिए, अगर अंदर जन्नत के फूल नहीं खिले हुए तो कुछ बात नहीं बनेगी। इस्लाह की जरूरत है दिल की। चलिए आखिरी रुकू है आज का, फरिहल मुखल्लफून। پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھنے رہنے پر خوش ہیں۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا قصہ ہے کہ کچھ لوگ تو چلے گئے، یعنی آپ ساتھ ساتھ چلیے، غزوہ بدر کی کال آئی تبوک کی، کچھ لوگوں نے پہلے ہی عذر بہانے کر کے گھر میں رہ گئے، دیر کی، سستی کی، کچھ لوگ جو تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں۔ اب یہاں سے وہ حصہ شروع ہو رہا ہے غزوے کا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اور گیارہویں پارے کی ابتدا میں پھر وہ منظر آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ تو یہاں اب اس تناظر میں اس کو سنیے گا، فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہیں۔ کس بات کی خوشی منا رہے تھے؟ دیکھو ہم بچ گئے، وہ گرمیوں میں دھوپ میں پھر رہے ہیں، مشکلوں میں ہم ٹھنڈے مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا، انہوں نے کہہ دیا اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت سخت گرم ہے، کاش کہ وہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں اس بدلے میں جو یہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم کیا کہتے ہیں آج؟ ہر وقت کیا چاہیے؟ فن، کھیل، بور ہو رہے ہیں۔ آج بچے کیا کہتے ہیں؟ ہم بور ہو رہے ہیں، ہمیں فن نہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے اس دنیا میں؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں پہ روئیں۔ بس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ تم میرے ساتھ دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں ہی میں بیٹھے رہو۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے، آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں ہی میں چھوڑ دیجئے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریچھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ کیا ہے کامیابی؟ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رکوع نمبر 17 تھا یہ، اس کا عنوان کیا ہے؟ یہ پیچھے رہ جانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو کچھ لوگ پیچھے رہے اور خوشیاں منانے لگے کہ ہم پیچھے رہے اور جان اور مال کو بچا لیا، اور لوگ جو گرمی میں نکلے ان کو بے وقوف قرار دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اس دنیا کو جنت بنا کے بیٹھ گئے، تم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، اس دنیا میں اپنے برے عملوں پہ جتنا چاہو رو لو، چاہو کم ہنسو اور زیادہ رو لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لہذا بندہ مومن اس دنیا میں فن کے لیے نہیں آیا۔ دنیا میں جو لوگ ہر وقت فن کے دل دادا ہیں، کھیلنے کے، اور آج کے دور کا یہ ایک طاغوت ہے، ایک بت ہے کہ فن، گلیمر، جیسا چاہو جیو۔ کیا کہتے ہیں کہ ایٹ، ڈرنک اینڈ بی میری، آج زندگی کا یہی مشن دکھایا جا رہا ہے نا۔ لوگوں کے ذہنوں سے کوئی سنجیدہ سوچ ان کے قریب تک نہیں پھٹکنے دی جاتی، ताकि वो कहीं संजीदा होकर उस आखरत को ना सोचे। रिवायत में आता है क्यामत के दिन जहन्नमी इतना रोएंगे कि उनकी आंखों से आंसुओं की नदियां निकलेंगी, नदियां और नाले बन जाएंगे, उनके आंखों पे, चेहरे पे, ये गालों के ऊपर निशान पड़ जाएंगे उनके रोने के, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। फिर आंखों का पानी खुश्क होगा तो खून जारी होगा, खून जारी होगा उसके बाद पीप और पस निकलेगी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं। इसके बरक्स अगर आज दुनिया में अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के अजाबों को याद करते वक्त अगर कोई रोता है तो अल्लाह ताला से उम्मीद की जाती है कि कल क़यामत के दिन ये उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ इस पूरे रुकू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों के साथ मामला करते के लिए तैयार किया कि इनके साथ ना कीजिए, और इसी में वो आयत आ गई कि जब अब्दुल्ला बिन उबई की नमाज जनाजा आपने अदा कर दी, आपने कर दी थी, लेकिन उसके बाद फिर हुक्म आ गया कि आज के बाद आप किसी मुशरिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत उमर ने नबी सल्लम को रोका, अल्लाह के नबी आप एक मुनाफिक की नमाज पढ़ते हैं, तो आपने फरमाया हाँ मैं एक नहीं मैं 70 बार उसके लिए दुआ करूंगा, क्योंकि मुसलमान था। लेकिन फिर जब यह हुक्म आ गया तो फिर उसके बाद आपने कभी किसी मुनाफिक की नमाज को अदा नहीं किया। चंद आयतें आगे हैं, इसको पढ़ लेते हैं। वजा अल मुअज्जिरून मिनल आराब, बादिया नशीनों में से उजर वाले लोग हाजिर हुए कि इन्हें रुख्सत दे दी जाए, और वो बैठ रहे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से झूठी बातें बनाई थी। इनमें अब तो जितने कुफार हैं इन्हें दुख देने वाली मार पहुंच कर रहेगी, ज़ईफों पर और बीमारों पर, और इनके पास जिनके पास खर्च करने को कुछ भी नहीं कोई हरज नहीं, बशर्ते कि वो अल्लाह और उसके रसूल की खैर ख्वाही करते रहें। ऐसे नेक लोगों पर इल्ज़ाम की कोई राह नहीं, अल्लाह बड़ी मग़फ़रत और रहमत वाला है। हाँ उन पर भी कोई हरज नहीं जो आपके पास आते हैं कि आप इन्हें सवारी मुहैया कर दें, और आप जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सवारी के लिए कुछ भी नहीं पाता, तो वो रंजो गम से अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए लौट जाते हैं कि इन्हें खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं मुयस्सर। इन्नमा सबीलु अलल लज़ीना यस्ताज़ीनू का, बेशक इन्हीं लोगों पर इल्ज़ाम की राह है जो बावजूद दौलतमंद होने के आपसे इजाज़त तलब करते हैं। ये खाना नशीन औरतों का साथ देने पर खुश हैं, और इनके दिलों पर मोहर खुदाबंदी लग चुकी, और जिससे वो महज बेइल्म हो गए। इन आयात का उन्वान क्या है? उजर करने वाले। आपने देखा कि मक्का के इर्द गिर्द कुछ अरबी कबीले थे, जो अरब थे बद्दू, उनमें से भी कुछ लोग जो थे वो इसी तरह के उजर करके आए। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को कहा कि ठीक है इनको छोड़ दो, इनके हाल पे छोड़ दो, कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि इनके साथ क्या है। तीन किस्म के लोगों को जिहाद से माजूर करार दिया गया इन आयात में। नंबर एक ज़ईफ को, बीमार को, और तीसरा वो जो जिहाद के लिए इन्फाक की सलाहियत ना रखे। चौथी उन लोगों को भी अलग कर दिया गया जो खलूसे दिल के साथ करना तो चाहते थे लेकिन शरई उजर से रुक गए, और उन्होंने जिहाद के लिए सवारियां ना होने की वजह से ना जा सके। जैसा कि आपको बताया कि चूंकि सफर बहुत दूर का था, एक महीने की मुसाफत, तो उसके ऊपर कुछ लोग आते थे नबी सल्लम से सवारी मांगते थे। आपके सवारी नहीं थी, पहले ही 8-8 लोगों के हिस्से एक एक ऊंट आता था, तो जब नबी सल्लम कहते कि सवारी नहीं तो वो आंखों से आंसू लेके वापस जाते थे। मैं जब इसको पढ़ती हूँ इस आयतों को, तो मुझे वो लोग याद आ जाते हैं जो दीन की महफिलों को अटेंड करना चाहते हैं लेकिन राइड प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं जा सकते, और कहते हैं हमारे पास सवारी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो, कल तो अल्लाह ने यह सहूलत दे दी कि आप घर में बैठ के भी सुन सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग वाकई सवारी ना होने की वजह से भी दीन की जगह पे नहीं आते। हमारे अमल की बात इस पूरे में क्या है कि दीन के काम से रुकने के उजर नहीं करने। अगर हम मोहताज नहीं तो मोहताज नहीं बनना, अगर उजर नहीं तो उजर दिखाना नहीं। बाज़ लोग अपने आप को इतना मजबूर साबित करते हैं कि दिल चाहते हैं उनसे कहें बस बस ठीक है, अल्लाह ताला आप पे वाकई रहम करे। किसी को आप दीन की दावत दे के देखें फिर उजरों का दरवाज़ा खुल जाता है। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे, हमें अपने दीन के लिए लब्बैक कहने वाला बनाए, पीछे रहने वाला ना बना दे। आज की आयत तदब्बर नोट कर लीजिए, सूरह तौबा की आयत नंबर 23 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون। और आज की हदीस पढ़ देती हूँ, तफसील तो इंशाल्लाह बाद में हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा आप सुन ले सिर्फ। बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया ला गदवतुम फी सबीलिल्लाह औ रौहतुन खैरुम मिन अद्दुनिया वमा फीहा। सुबह या शाम का थोड़ा सा वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाना दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। आपने कितना वक्त लगाया अल्लाह के रास्ते में? 3 घंटे। तो आपने दुनिया और दुनिया की हर चीज से बेहतर चीज ले ली, मुबारक हो आपको। आज की दुआ थोड़ी सी तवील है, इसीलिए आयत थोड़ी मुख्तसर थी, बड़ी प्यारी है। और चूंकि ये कुरान पाक की तिलावत के बाद की दुआ भी है, तो मैं आपके साथ पढ़ लेती हूँ। सिर्फ पहले कमिटमेंट बता दूं आज की क्या है। कोई छोटी सी नेकी करनी है इस नीयत से कि कल इसको अल्लाह बड़ा करेगा। कोई नियत करें, किसको छोटा समझना, कोई नेकी ऐसी बताएं जिसको आप छोटा समझते हैं। देखिए कि बास नेकियां छोटी होती हैं लेकिन वक्त की नौयत उनको बड़ा बना देती है। किसी को माफ कर देना, किसी के गुनाह को माफ कर देना, या खुद सोचें और फिर इसमें से इंशाल्लाह नेकी करें। और आज जरूर करिए इस नियत को, तो अल्लाह ताला आसान करेगा। इसी दुआ के साथ आज की बात खत्म करती हूँ, जो आज की दुआ भी है। اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو ہمارے کانوں آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، یعنی ہماری زندگی میں یہ نعمتیں نہ چھن جائیں، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر کر دے، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبتیں نہ ڈال، اور دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ، یعنی سارا علم کیوں حاصل ہو کہ دنیا مل جائے، اور نہ کسی انسان جب فرشتے کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔